నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి.
యాక్చువల్లీ హర్ తిథి హమారే లియే మహత్వపూర్ణ హై, లేకిన్ జో భక్తి మే శురువాత్ కర్తే హై उनके लिए सबसे पहली एकादशी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दिन हमारे लिए पवित्र होना चाहिए. हर दिन हमें तपस्या, तपस्या का अर्थ है हर दिन हमें श्री कृष्णमय, 24 घंटा कृष्णमय, कृष्ण भावना भावित जीवन हमारा मनुष्य जीवन का एकमात्र मुख्य उद्देश्य है कि हम हमेश कृष्ण भावना भावित रह के हमारे जीवन सनातन जीवन है हमारा. ये नहीं कि हमारा ये एक जीवन, ये एक जीवन मनुष्य शरीर में एक जीवन है. हम तो सनातन है, हम हमारे लिए कोई एक दिन नहीं, एक जीवन, एक लाइफ नहीं, सनातन. तो वैसे तो हमारे लिए हर रोज उत्सव, संत को सदा दिवाली और आठे पहर आनंद, संतों के लिए हर रोज उत्सव. तो उत्सव में क्या करते हैं वो हर दिन हमें करना चाहिए. जन्माष्टमी में हम फास्टिंग करते हैं, एकादशी में फास्टिंग करते हैं, मिताहार, ज्यादा खाना नहीं, कम खाना नहीं, प्रसाद खाना और साधु जीवन जीना और पवित्र जीवन जीना. तो हर रोज एकादशी है और एकादशी के दिन एकादश इंद्रियां हैं, वो एकादश इंद्रियों को हमें वश में रख के श्री कृष्ण में लगाना है. खाली वश करके बैठे रहना नहीं है तो कोई फायदा नहीं है. इससे अच्छा है खाते रहो पीते रहो, लेकिन वश में करके भगवान कृष्ण में कथा सुनना और भक्तों का भगवान का दर्शन करना वगैरह, सवई मन कृष्ण पदारविंद. तो सब इंद्रियों को श्री कृष्ण में जोड़ के रखना, ये एकादशी व्रत है. अर्थात मनुष्य जीवन का सुख एक ही है कि श्री कृष्णमय जीवन, जीवन में चेतना कृष्णमय रखें. तो चेतना हमारी ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग हम दें हमारी चेतना को कि चेतना भावना हमारी श्री कृष्ण में रहे हमेश के लिए. ये जन्म ये शरीर छूटने के बाद भी हमें कृष्ण भावना हमारी जारी रहे, ये आइडिया है मनुष्य जीवन का. और जो भी हम करेंगे उसमें दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये भौतिक जगत की डिजाइन भगवान ने ऐसी की है कि हम लोग भगवान अथवा तो कृष्ण भावना भावित हम बने रहे. इसलिए रूप गोस्वामी हमें शिक्षा देते हैं कि कृष्णा भक्ति रस भाविता मति क्रियताम अपि कुतो विलभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृतय न लभ्यते. तो कृष्णा भक्ति रस भाविता, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना, कृष्णा भक्ति रस भाविता मति बुद्धि अथवा कॉन्शियसनेस. मति का अर्थ है कॉन्शियसनेस. कृष्णा भक्ति रस भाविता मति क्रियताम, खरीद लो. क्रियताम अपि, अपि का मतलब है कि खरीद ही लो. अपि कुतो भी, कहां भी लभ्यते मिलती है. कृष्णा भक्ति रस भाविता मति भावना, कृष्णा भक्ति रस भावना मति जहां भी मिलती है वहां से उनको खरीद लो. तो ये खरीदने का मूल्य क्या है? लोल्यम, तत्र लोल्यम, लोलुपता, लोभ, कैसे मिलूं, कैसे पाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं. लोल्यम, लोलुपता, लोभ. जैसे अगर कृष्णा दिल्ली में आने वाले, लेकिन हमें खबर नहीं है दिल्ली में कृष्णा आने वाले हैं, और आ भी चुके हैं, लेकिन करोड़ उपाय से आपको पता नहीं चल रहा है। तो विह्वल था, विह्वल कहाँ जाऊं, कैसे, किसको पूछूं, कहाँ, क्या सुनूं, कैसे, लोलुपता, लोभ। तो ये उनका मूल्य है, तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम, लोलुपता, विह्वलता, तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम, एक ही मूल्य है उनका, लोलुपता। जन्म कोटि सुकृत, कोटि कोटि जन्मों के पुण्य उदय से न लभ्यते, पुण्य से नहीं मिलती। ये कृष्ण भक्ति भावना, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी ने द वर्ड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये रूप गोस्वामी के श्लोक से लिया है, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, यस, भक्ति रसामृत सिंधु। तो हमें जन्म जन्मांतर कृष्ण भावना भावित रहना है, खाली एकादशी द्वादशी मनुष्य जन्म नहीं, तो इनकी ट्रेनिंग हमें ले रहे हैं। और मनुष्य जन्म का एकमात्र मतलब है, अर्थ है, कि हम कृष्ण भावना भावित रहें सनातन काल तक। तो इसलिए इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को, सबको ट्रेनिंग दी जाती है। अभी क्या ट्रेनिंग दे जाती है, कि हम 24 घंटा सनातन काल तक हम कृष्णा भावना भावित रहें। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये सोसाइटी है कृष्ण चेतना के लिए, कृष्ण भावना के लिए, कॉन्शियसनेस। कोटि कोटि जन्मों के सुकृत से भी नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता, कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति भावना। तो उनका मूल्य क्या है, मूल्य क्या है, विह्वलता, कैसे पाऊं, कहाँ पाऊं वगैरह, लोलुपता। तो हमें द्वादशी हो या एकादशी हो या जन्माष्टमी हो या रामनवमी हो या कुछ भी हो, हमारा 24 घंटा और ज्यादा समय बचा नहीं है, हम ऑलरेडी आधे रास्ते तो आ गए हैं। तो अभी ये सब झंझट छोड़ो, ये सब झंझटे छोड़ो और कृष्णा में जोड़ो, समय इन्हें बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भाव, कृष्ण भाव का अंकुर फूटा है, कृष्ण भाव का अंकुर जिसके हृदय में फूटा है, वो अपनी एक मिनट भी फिजूल में नहीं गवाता। कैसे मैं कृष्ण भावना भावित रहूं, कैसे, क्योंकि ये झंझटें तो छूटने वाली है। आप नहीं छोड़ना चाहोगे, फिर भी छूटने वाला है, और वैसे जाएंगे जैसे गधे कुत्ते जा रहे हैं, क्या फायदा रहेगा मनुष्य जीवन का। और ये प्रभुपाद जी ने हमें दिया, वो इतना सुंदर जीवन है, इतना सुंदर, इतना सुंदर। प्रभुपाद जी को पूछा गया था, आप इतना सारा माला, भक्ति, भगवान को भोग और पूजा लिखते हो, सब कुछ करते हो, 24 घंटा कृष्ण के पीछे पीछे, व्हाट इफ देयर इज नो कृष्ण। तो प्रभुपाद को पूछा गया कि अगर कृष्ण नहीं है और आप इनके पीछे पड़े हो, तो ये सब आपका फिजूल का जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं है, ये जीवन ही इतना सुंदर है, ये जीवन ही इतना सुंदर है, अगर कृष्ण नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन कितना सुंदर जा रहा है, हमारा जीवन कितना आनंदमय और कितना सुंदर, खाना सुंदर, गाना सुंदर, संग सब कुछ सुंदर है और कड़ा है नहीं। देखो सब कुछ कड़ा है। कोई पूछते हैं मुझे कि ये हरे कृष्णा आप करते हो, क्या उससे भी कुछ सरल, सिंपल मार्ग है, कुछ रास्ता है? तो मैंने कहा आप सोच लो, तप करो हिमालय में जाके, खान पान कंदमूल, अगर ये नहीं है सिंपल तो हवन करो ओम स्वाहा, अगर ये नहीं तो शास्त्रों का अध्ययन करो, अगर ये नहीं, ये कड़ा है तो फिर आप स्वाध्याय करो। अहो बत स्वपचो अति गरियान यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम, तप तेपस जुहू, सब नदियों में, सब तीर्थों में स्नान करो, जुहू सस्नु आर्या ब्रह्मानुचूर, सब शास्त्रों का अध्ययन करो, ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहणती है ते, तो ये सब कड़े प्रोसेस है। जिम्नास्टिक करो, अष्टांग योग, यू नो, शुरुआत होती है शाम, इंद्रियों का कंट्रोल, इंद्रियों को वश में करना, मन को समो दमो दम दमन करना, मन को काबू में, एक तप, एक पग पर खड़ा होके हिरण्यकश्यप के, कड़ा काम है सब। समो दमो तप, देन प्राणायाम, प्राणायाम को कंट्रोल में करो, प्राणायाम, देन प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ है सब नियम, और आपको गुफा, अकेले और ध्यान और प्रत्याहार, देन आसन, पद्मासन और सब आसन, टांगे ऊपर सर नीचे, और आसन पर जीतो, आसन को जीतो, और बाद में धारणा, धारणा मतलब प्राणायाम करते और छोड़ते हो, थोड़ा एक मिनट पकड़ के रखो, 20-25 सेकंड, जो भी 20 सेकंड, बाद में छोड़ो, पकड़ के रखो, छोड़ो, तो ये प्राणायाम ऐसा 12 प्राणायाम 20 प्राणायाम करोगे तो ये धारणा होगी, और ऐसी 20 धारणा करोगे तो ध्यान होगा, और ऐसे 20 ध्यान करोगे तो समाधि। 48 मिनट तक ऐसे करके एक केंद्रित कृष्ण पर, अथवा बिंदी पर, ओम पर केंद्र केंद्रित, मन कहीं नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा प्रोसेस करो, ये सरल है तो ये करो। तो हमारा जीवन, खाना कोई पकाती है कृष्णमय, उनको कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन, ध्यान धारणा धरण प्राणायाम आसन जिम्नास्टिक कुछ, कितना सरल जीवन है। कोई चपाती बनाती उनका, वो उनका ध्यान, जब जसोदा माई बटर चर्निंग करती है तो कृष्ण के गीत गाती है कृष्णमय। चपाती कोई खाना बनाता है कृष्णमय, क्या पकाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, सॉल्ट ज्यादा, मिर्च ज्यादा, या ये कम, या कारेला करूं, या पोटेटो करूं, या गोपी, एक गोपी बैठी है नदी के किनारे, जमुना, जमुना नदी पर, और उद्धव जी कहते हैं आप थोड़ा ध्यान करो, बिरयानी है उद्धव, तो थोड़ा मन को कृष्ण में लगाओ, कृष्ण में ध्यान करो। गोपी कहती है अरे मैं तो उन छलिए को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान करने की बात कर रहे हो। तो ये कृष्ण भावना भावित, ये कृष्ण भावना है। 24 घंटा हमारा कितना काम करते रहो, काम पर जाते हो, आते हो, खाते हो, नहाते हो, जो भी करते हो, कितना सरल ये जीवन है, कितना सुंदर है जीवन है, कितना ऊंचा है जीवन है, कोई कड़ा काम नहीं है, कितना सुखमय जीवन। आपका पहले का जीवन देखो, कृष्ण भावना भावित हुए उससे पहले का जीवन देखो, और अभी का जीवन देखो, कौन सा जीवन अच्छा है। तो ये सहज योग है, सहज योग। सपोज आप काम करते हो, ऑफिस में बैठे हो, या कोई लोग आते जाते रहते हैं, तो इन बिटवीन आप हरे कृष्ण, या तो कुछ टेप लगाए रखी, या तो कान में कुछ लगाए रखा, या हमेशा मुझे कृष्ण में ही रहना है, ऐसा संकल्प करो तो हो जाएगा। दो चपाती बनाने के बीच में भी आपको कृष्ण याद आ जाएंगे, और दो कदम चलोगे तो दो कदम के बीच में भी कृष्ण याद आ जाएंगे। आपका जीवन ही कृष्णमय, जैसे कि भूत किसी को लगाओ तो वो हमेशा भूत में उनका ध्यान रहता है ना, भूत हैज पजेस्ड, सो लेट कृष्ण पजेस यू, है ना, कृष्ण नामक भूत आपको लग जाए तो जहां भी जाओगे वो भूत वाला भूत को लेके जाएगा, है ना, ऐसा अनुभव है ना। तो हम इतना कृष्ण भावना भावित बन जाए कि काम भी चलता रहे, काम करते रहे, कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन की जरूरत गोपियों को नहीं थी। गोपियां सब कुछ करती थी, खाना पकाती थी, बटर चर्निंग, गायों का ये का सब कुछ करती थी, लेकिन उनका मन कृष्ण से हटता नहीं था, हटाने की कोशिश भी करती थी लेकिन फिर भी हटता नहीं था। जब मथुरा चले गए तो गोपी बोलती मैं ये छलिए को भूलना कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान करने की बात कर रहे हो, तो ये कृष्ण भावना भावित तो कृष्ण भावना कहाँ भी मिलती है क्रियताम, तुरंत खरीद लेनी चाहिए, और खरीदने का मूल्य है लोभ। तो द्वादशी, एकादशी, सप्तदशी, एवरी तिथि फॉर अस इज सेम। एकादशी का मतलब है एकादश इंद्रियों को कंट्रोल में लाके श्री कृष्ण में जोड़ो, ये एकादशी का मतलब है। अर्थात खाना बिल्कुल कम और सोना बिल्कुल कम और सब कुछ कम करके, सब कुछ कंट्रोल करके भगवान श्री कृष्ण मई 24 घंटा हो, ये एकादशी है। तो ये सवाल यहाँ पूरा हुआ, ठीक है। आत्मा, तो आत्मा आप सब जानते हो आत्मा क्या है। आत्मा ये सबसे पहले श्री कृष्ण का अंश है, उसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण की ये शक्ति है। कृष्ण का अंश का अर्थ क्या है, ऐसे तो आत्मा श्री कृष्ण के बाद पैदा नहीं हुआ, न श्री कृष्ण आत्मा के बाद पैदा हुए, श्री कृष्ण भी पैदा नहीं हुए और आत्मा भी पैदा नहीं हुआ। सनातन है, तीन चीजें सनातन है, जीव, ईश्वर और माया, आत्मा, परमात्मा और माया, ये सनातन तत्व है, कोई किसी में से आया नहीं। हालांकि कृष्ण ही उद्गम स्थान है सबका, लेकिन सनातन है। हम कहते हैं कि आत्मा सनातन है, सनातन का अर्थ कि पैदा नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण सनातन है, उसका अर्थ है कि वो पैदा नहीं हुए, वो थे, हैं और रहेंगे। थे का अर्थ कभी कोई समय वो केम इनटू बीइंग, पैदा हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ये शक्तिमान है, शक्तिमान है, और जीव एक कृष्ण की तथस्थ शक्ति है। जीव तथस्थ शक्ति, भेद अभेद प्रकाश, जीव एक कृष्ण की तथस्थ शक्ति है। माया श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति है। तो परास्य शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और तीसरी कृष्ण की शक्ति है चित्त शक्ति, या तो दिव्य शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति या आह्लादिनी या तो चेतना शक्ति। ये आध्यात्मिक जगत में चित्त शक्ति है, वो तीन शक्ति है। चित्त शक्ति है संदिनी, संवित और आह्लादिनी शक्ति, ये चित्त शक्ति के तीन प्रकार है। एक ही शक्ति चित्त शक्ति, चेतना शक्ति, कॉन्शियसनेस, चेतन। तो आह्लादिनी शक्ति राधारानी, तो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव तथस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, एक जीव एक कृष्ण की तथस्थ शक्ति है। ऐसा नहीं होता कि श्री कृष्ण के हम छैणी से टुकड़े 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 कर दें तो जीव बन जाता है, ऐसा नहीं है। जीव कृष्ण का अंश है, उसका मतलब क्या है, वो श्री कृष्ण की शक्ति है। जैसे कि मेरी ये शक्ति है, तो मैंने ये शक्ति पैदा की तो मैं जीरो बन गया, ऐसा नहीं है। मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये जीव श्री कृष्ण का अंश है, अर्थात ये कृष्ण की शक्ति है, और ये जीव सनातन है, और जीव में से ही आनंद और चेतना पैदा होती है। हम चेतना फैक्ट्री में पैदा नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में पैदा नहीं कर सकते। डेड बॉडी में अगर चेतना चली गई, जीव चला गया, तो उसमें हम कुछ चेतना डाल के उनको जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि जीव चला गया, जीव में से चेतना आती है, और अल्टीमेटली कृष्ण चेतना, कृष्णा ये नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम, वेद वाक्य। कृष्ण नित्यो नित्य में नित्य है और चेतन में चेतन है, सब चेतना कृष्ण से आती है, पावर हाउस कृष्ण है। तो चेतना ये जीव का स्वभाव, चेतना ये जीव परमात्मा आत्मा में से चेतना आती है। और मैंने क्या कहा, जीव में से चेतना आती है, जीव में से आनंद आता है। जैसे कि पत्नी पति जब जिंदा है तो पति के साथ आनंद करती है, खाती है, बैठती है, चलती है, सोती है, सब कुछ आनंद करती है। लेकिन जब पति चल बसा तो पति का शव उनके सामने पड़ा है, तो पति के शव में से 10 दिन के बाद कौन सा वो आनंद निकालेगी, क्या आनंद मिलेगा उनको 10 दिन के बाद? उनके नाक को पति में से आनंद होगा, गंध दुर्गंध, क्या उनको छुएगी तो क्या आनंद मिलेगा? उनको देखेगी वो तो क्या आनंद मिलेगा? शरीर फूल जाता है और टाइट हो जाता है, तो उनको छुए उनको डर लगेगा राधर, है ना? तो जब जीवित थे, जब पति जिंदा थे, तब उनको सब आनंद मिलता था पति से। तो उनको आनंद पति के शरीर में से मिलता था या पति आत्मा में से मिलता था? कहाँ से आनंद मिलता था? ये आत्मा है, ये आत्मा में से आनंद मिलता है। पैसों से आनंद मिलता तो सब पैसों वाले सुखी हो जाते, आप सब पैसों वाले सुखी हो जाते, दुख कभी नहीं आता आपके पास, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा हर रोज, तो आपका आनंद भी बढ़ना चाहिए हर रोज। लेकिन ऐसा है नहीं, कभी आनंद जीरो नेगेटिव हो जाता है, दुख दुख दुख, कभी आनंद। तो पैसों से या तो ब्यूटी से या तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समाग्र से वीर्य से अशास्त्रीय ज्ञान वैराग्य, ये ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में से आनंद आता तो ऐश्वर्यशाली लोग सुखी होने चाहिए। तो ऐश्वर्यों में से, पैसों में से, या तो एजुकेशन से, स्त्री से, सुंदरता से आनंद नहीं मिलता। आनंद कहाँ से मिलता है? आत्मा से, परमात्मा से। आनंद का स्रोत आत्मा परमात्मा है। इसलिए कोई भीख मंगा होता है वो भी आनंद कर लेता है। आप देखोगे जब ड्राइविंग करते हैं तो रास्ते में कई बच्चे भीख मंगे होते हैं, गंदे कपड़े नहीं, स्नान नहीं, लेकिन वो हंसते हैं और खेलते हैं और फुटपाथ पे, पैसा नहीं है कुछ, खान पान भी इतना नहीं है, फिर भी आनंद। आनंद आत्मा में से, आनंदमय अभ्यासात, वेद वाक्य, आत्मा आनंदमय है, आत्मा का अभ्यास है आनंद। आत्मा से हमेशा आनंद निकलता है, लेकिन हम आनंद की ओर ध्यान नहीं देते, हम दुख की ओर ध्यान देते हैं, इसलिए हमें दुख लगता है। हमें ज्यादातर आनंद मिलता है, हमेशा आनंद मिलता है, लेकिन हमारा ध्यान, चेतना हमारी आनंद में नहीं है। हमारी चेतना जैसे सुंदर चीज हो और गंदी चीज हो, तो अगर सुंदर चीज की ओर हम ध्यान रखेंगे तो हमें सुंदरता आनंद मिलता रहेगा, लेकिन हमारा ध्यान हमें गंदी चीजों में रहता है, तो गंदी चीजों में रहेगा तो दुखी दुख, दुखी आता रहेगा। आनंद है फिर भी हमारा चेतना गंदी चीजों की ओर। तो ये आत्मा है, आत्मा श्री कृष्ण का अंश है, और आत्मा श्री कृष्ण का अंश शक्ति है, इसीलिए आत्मा का फर्ज बनता है कि श्री कृष्ण की सेवा करे। सबसे सरल सेवा है श्री कृष्ण के मुंह से और जीवे से नाम लेना, 16 मालाएं डे। जब 16 मालाएं डे सेवा करता है आत्मा कृष्ण की, तो उनको श्री कृष्ण का प्रेम मिलता है। जो जिसकी सेवा करता है उनको उनका प्रेम मिलता है। तो आनंद चाहिए तो कृष्ण की सेवा 16 माला। तो ये है आत्मा। और कोई सवाल?
जैसे आपने ये पति का एग्जांपल देके समझाया कि आत्मा इज एवर लिविंग, तो इट गोज आउट ऑफ द बॉडी, बट जो चेतना है वो स्टिल आपकी प्रोटेक्शन में रहती है। जैसे भगवान हमेशा हमारे प्रोटेक्शन में रहते हैं, तो जो हमारे प्रिय जन है जब वो चले भी जाते हैं तो उनकी आत्मा इज एवर लिविंग, सो दैट लिव्स फॉर योर प्रोटेक्शन फॉर एवर।
यस,
लाइक गॉड,
आत्मा लिव्स फॉर एवर।
उसका आनंद फिर भी महसूस करना चाहिए।
हाँ, अगर आपकी चेतना ऊपर उठ जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाओ, तब आपको उनका, आपके पति देव, आपके पिता, आपकी माता, आपका कोई भी चल बसा, तो अगर वो दिव्य है, आप दिव्य हो, आपकी चेतना ऊपर उठ चुकी है, तो उनके मरने का शोक भी नहीं होगा, लेकिन उनका आनंद आपको अभी भी मिल सकता है, लेकिन आपको चेतना आपकी ट्रेन करनी पड़ेगी, है ना? इसका ट्रेनिंग, वीरा, वीरा में आनंद है ना, राधा रानी। विरह में आनंद, तो चेतना की बात है, आनंद में अभ्यासात हम आनंद में ही है, लेकिन हम अज्ञानता में माया में है, इसीलिए लगता है मेरे पिताजी चले गए, मेरा बेटा चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। उनका आनंद हम भी ले सकते, वो वहाँ है, हम यहाँ है, शरीर बदल दिया या कुछ भी देश या प्लेनेट बदल दिया, जो भी कर दिया, विरह में और भी आनंद बढ़ जाता है ना, विरह में और भी आनंद, राधा रानी विरह में और आनंद करती है। हमारा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हमारी भक्ति विरह में है, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती है, प्रेम की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे कि रूप सनातन गोस्वामी, हे राधे व्रज देव के च ललिते, हे नंद सुनो कुता विरह, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो ढूंढ रहा, कुता गोशंता इति सर्वतो व्रजपुरे, खेदर गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्य कुता, कहाँ हो आप, कालिंदी वन में हो, गोशंता इति सर्वतो व्रजपुरे, व्रजपुर में हमेशा घोषणा करते थे। तो ये विरह में उपासना, विरह में उपासना, ये हमारा भाव है। मिलन में जो प्रेम होता है उससे ज्यादा प्रेम विरह में इंटेंसिटी पकड़ लेता है। जब पतिदेव घर है तो है, सेवा करते हैं, खाना देते, सब कुछ है, लेकिन अगर वो पतिदेव अमेरिका 5 साल के लिए चले गए तो प्रेम की तीव्रता बढ़ जाती है ना। तो ये विरह में विप्रलंब सेवा, विरह में सेवा, तो चेतना हमारी वो होनी चाहिए, चेतना। तो आगे बढ़ते हैं, मन की शांति, शांति कैसे मिल सकती, शांति की फॉर्मूला है। प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए तो अमेरिका वियतनाम का युद्ध हो रहा था और सारे अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे 18 साल से 24 साल तक के बच्चे कॉलेज में स्कूल में सब बच्चों को, तो वहाँ के सिटीजन बच्चों को जो अभी खेल रहे हैं कॉलेज और स्कूल, हाई स्कूल मेनली कॉलेज, तो उन बच्चों को ड्राफ्ट कंपलसरी वियतनाम जाके युद्ध करना, अभी उनको बंदूक पकड़ना पता नहीं है। और सारे एयरपोर्ट देखोगे तो माँ बाप रो रहे हैं, ककड़ रहे हैं, एकलौता बच्चा जा रहा है, किसी का बच्चा आ रहा है तो लंगड़ा है, टूटा फूटा, युद्ध करके आ रहा है, सारा घासली सीन। तो प्रभुपाद जी ने शांति की फॉर्मूला लिखी कि शांति कैसे हो सकती है, किसी को भी, भगवद गीता का श्लोक है, क्या शांति की फॉर्मूला है कि भोक्ता राम यज्ञ तपश्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आपको शांति तभी हो सकती है जब ये तीन चीज आप जीवन में अपनाओ। कौन सी तीन चीज? एक चीज कि भोक्ता राम यज्ञ तपश्याम, मैं जो भी करता हूँ, मैं जो भी उपार्जन करता हूँ, ये सब चीजों का भोक्ता श्री कृष्ण है। यत करोषि यत स्नासी यज्जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो। तो भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, हमारे यज्ञ और तप के भोक्ता कौन है? कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, और सारे सृष्टि का मालिक एक है और वो है कृष्ण। सारी सृष्टि का मालिक एक है और वो कौन है? श्री कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत सर्वभूतानाम, और कृष्ण ही सब जीवात्माओं के सुहृत मित्र है, वेल विशर है, शुभेच्छक है, ऐसा समझना। सुहृत सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, ऐसा मुझे जान के ज्ञात्वा माम, जो मुझे ये तीन दृष्टि से जानता है कृष्ण को, उनको शांति, चिरं शांति हो सकती। ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, उनको चिरं शांति हो सकती है। तो ये शांति की फॉर्मूला है, प्रभुपाद जी ने लिखी शांति की फॉर्मूला, और मनुष्य जीवन इसीलिए ही हमें मिला है। लेकिन ठीक है, धर्म, पति का धर्म, बच्चों का धर्म, माता का धर्म, राजा का धर्म, स्त्री का धर्म, सब धर्म बजाते रहो, और साथ में श्री कृष्ण हर पल जैसे भूत लगाओ, कृष्ण का भूत लगाना चाहिए, है ना। बहिर्मुख जीव भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे झापुटी आदरे। अनादिकाल से हमें कंडीशनिंग, तो उनको दूर करने के लिए भी इतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा, कंडीशनिंग, और दिव्य चेतना आध्यात्मिक स्तर पर आना पड़ेगा। और आध्यात्मिक स्तर पर हमने देखे हैं कई पुरुष महापुरुष, कई भक्त, कई लेडीज सती, कई सती आध्यात्मिक स्तर पर, यू नो, अनसुया और सावित्री और गांधारी और कई कई मंदोदरी, कई सती है ना, जो आध्यात्मिक, टोटल आध्यात्मिक स्तर तो हो सकता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है, हर रोज प्रैक्टिस, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। चेतना हमें शुद्ध करके कृष्ण चेतना बनानी है, और उसमें से अखुट आनंद पैदा होता जाएगा, और आपके आजू बाजू में पुत्र परिवार जो भी है वो भी आनंदित होते जाएंगे। ये टेस्ट है, हमें आनंद चाहिए, सबको आनंद चाहिए, चीटी चिड़िया सबको आनंद चाहिए, लेकिन आनंद की खोज गलत जगह पे कर रहे हैं। आनंद गलत जगह पर, पार्टियां, मीट, फिश, लिकर, सेक्स, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये सब चीजों में आनंद ढूंढ रहे हैं, गलत जगह आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद चेतना, कृष्णा कॉन्शियस चेतना हो जाए, हम दिव्य स्तर पर रहे, दिव्य आनंद के स्तर पर, तो ये हमें प्रैक्टिस करना है। हमें प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, चैंटिंग मेक्स मैन परफेक्ट, चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग, चैंट चैंट चैंट, और बूढ़े कहते हैं कैंट कैंट कैंट, और ये बहुत सुंदर जीवन है, बिलीव मी। आप जैसे प्रैक्टिस कर, देखो अभी तक आपने प्रैक्टिस की, जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस की, कोई दुख नहीं है, कितना आसान तरीका है, कितना सुंदर जीवन है, कितना सुंदर संग है, कितना सुंदर खाना है, कितना सुंदर सब कुछ उत्सव है, क्या सुंदर नहीं। कृष्णा कॉन्शियस जीवन की जो प्रभुपाद जी की डिजाइन है, कितनी सुंदर डिजाइन है, इन्होंने प्रोसेस दिया, दिस इज ए प्रोसेस, इज नॉट कि मैं गुरु हूँ इसलिए मैंने सब कुछ दिया। हम गुरु लोग, हम वर्तमान गुरु जो है आपको प्रभुपाद से ज्वाइन करते हैं, ये गुरु का मतलब है, नहीं कि मेरा शिष्य है, ये सब प्रभुपाद जी के हैं, कृष्ण के हैं, ये परंपरा के हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें प्रोसेस दिया है, प्रोसेस दिया। किसी ने सवाल पूछा, अभी मैं गया था जर्मनी, तो जर्मनी में सवाल किया मुझे किसी ने कि शिष्यों का पाप गुरु को लेना पड़ता है दीक्षा काल, तो गुरु, आप गुरु हो तो वो पाप का भंडार आप क्या करते हो। तो सवाल यह है कि गुरु, गुरु परंपरा में शिष्य, शिष्य अपनाता है, मेरा शिष्य नहीं, ये परंपरा का शिष्य है, परंपरा का शिष्य, ये परंपरा में जुड़ा है, नहीं कि मुझे जुड़ा है, प्रभुपाद को जुड़ा है, प्रभुपाद को जुड़ा है। तो अंत में कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, परंपरा आखिरी गुरु कौन है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो कृष्णा कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम अहम त्वाम सर्व पापेभ्य, हम क्यों चिंता करें आपके पापों की, चिंता हम क्यों करें। अगर हम लेके बैठ जाए कि मेरा ही शिष्य है, आगे नहीं कुछ, मेरा शिष्य, तो तकलीफ हो सकती, लेकिन जब परंपरा को दे रहे हैं ये प्रभुपाद के शिष्य, तो फिर कृष्णा कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्य, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कृष्ण भक्ति करने से सारे पाप कर्म जल के भस्म हो जाते हैं सारे। अगर शिष्य गुरु को छोड़ देता है या गुरु शिष्य से नाराज है तो वो कृष्ण शिष्य का जो भी पाप पहले का बात का सब कुछ शिष्य का पाप संचित रखता है। कृष्ण संचित रखना मीन्स स्टोरेज रखना संचित। और जब छोड़ देता है गुरु को सही गुरु को, गुरु न जो गुरु गुरु परंपरा में सही है वो छोड़ देता है तो सारे पाप कहीं गुणा करके उनको भगवान वापस करते हैं और वो इतना दुखी हो जाता है, इतना नरक भी नए नए नरक पैदा करने पड़ेंगे सीवियर उनके लिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ठीक है, तो भगवान वापस करते हैं पाप। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो भक्ति शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उनका कर्म सारा निर्दह दहन जलना, निर्दहति और जल जाना, ज्यादा जल जाना, निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो आगे बढ़ते हैं, वैष्णव सदाचार, सबसे श्रेष्ठ सदाचार क्या है? सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो कदाचन इति विधि निषेधयोर अतएव किंकर। सततम स्मर्तव्यो विष्णु, हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उल्टा भी कहा दोनों बार मीन्स प्रेशर। सत्य वस्तु में कह रहा हूँ, भूलो मत और याद करो, किसको? कृष्ण को। तो ये विधि निषेध मतलब कि सदाचार जो नहीं करना चाहिए निषेध, और विधि जो करना चाहिए, विधि जो विधि विधान नियम क्या करना चाहिए। विधि क्या है? स्मरण। निषेध क्या है? विस्मरण। हमेशा कृष्ण को याद करो, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस में हमेशा कृष्ण भावना भावित रहो हमेशा। सदाचार क्या है? विधि निषेध क्या है? करना क्या है क्या नहीं करना है? हमेशा कृष्ण को याद करो और कृष्ण को कभी मत भूलो, ये वैष्णव का सबसे श्रेष्ठ सदाचार है। बाद में तो बहुत सदाचार है, जैसे कि वैष्णवों का अपराध मत करो, वैष्णवों के अपराध से कैसे बचे। तो वैष्णवों के अपराध कितने हैं? छह। हंती पिटाई करना, मारना वैष्णव को, ये वैष्णव अपराध। हंती निंदती, वैष्णव की निंदा करना, चुगली करना। हंती निंदती वैद्वेष्टि, वैद्वेष्टि वैष्णव का द्वेष करना, वैष्णव का द्वेष, द्वेष जानते हो ना, ईर्ष्या करना। हंती निंदती वैद्वेष्टि वैष्णवा ना अभिनंदती, वैष्णव का अभिनंदन नहीं करना। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा जय राम, राम राम जय राधे, अभिनंदन ग्रीटिंग करना। तो ग्रीटिंग क्या है? जय राधे, जय कृष्ण, हरे कृष्ण। स्पेशली हम लोग इस्कॉन में क्या करते हैं? अभिनंदन, हरे कृष्ण प्रभु। तो अभिनंदन करना, अगर अभिनंदन नहीं करते हो तो वैष्णव का अपराध है। वैष्णवा ना अभिनंदती क्रंदती, वैष्णव पर क्रोध करना, वैष्णव पर क्रोध करना। क्रंदती उपजायते ना हर्षम दर्शने, वैष्णव का दर्शन होने पर हर्ष नहीं होना, आनंद उल्लास नहीं होना। वैष्णव का दर्शन होने पर आनंद आनंद होना चाहिए, आनंद। ये सब छे वैष्णव अपराध से हमारा पतन निश्चित है। वैष्णव का अपराध अगर करोगे तो हमारा पतन निश्चित है। कलयुग में अगर हम मन से कुछ अपराध करें तो वो अपराध कलयुग में माफ है, लेकिन फिर भी हमें प्रायश्चित करना चाहिए, उनका दुख होना चाहिए कि मैं वैष्णवों का अपराध कर रही हूँ, उनका दुख होना चाहिए। और अगर वैष्णवों का अपराध हो गया तो उनके तीन रास्ते हैं, एक तो वैष्णवों को प्रसाद के लिए भोजन के लिए बुलाओ, ना आए तो उनको दंडवत प्रणाम करो, अगर वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो प्रायश्चित दुख, हमें दुख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो माफ करने किसी को माफ नहीं करता है, एनीवे इज अ थर्ड क्लास इज ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ही चलता हमेशा, तो ठीक है जाने दो, ऐसा नहीं। अगर वो थर्ड क्लास भी वैष्णव है, अगर उनका हमने अपराध किया तो उनके हमें प्रायश्चित करना चाहिए, ज्यादा माला करो, कुछ ज्यादा माला कर लो, या तो माफी मांगो, उनसे क्षमा मांगो। तो क्षमा, प्रसाद और प्रणाम, ये तीन चीज करो, प्रायश्चित करो, दुख दुख लगना चाहिए, ठीक है। ओके आगे चले। देव देवताओं में भक्ति कौन दे सकते हैं? शंकर। वैष्णवानाम यथा शंभु, ये रसन स्वाद शंकर जाने, के जाने सुख जोगी रे, काये क जाने व्रजनी रे गोपी, बने नरसैयो भोगी रे जी, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्म लोकमा नाही रे। भक्ति पदार्थ, भक्ति रस कौन दे सकता है? ये रसन, भक्ति रस का स्वाद शंकर, जहाँ शंकर सुखदेव गोस्वामी और गोपी, तो भक्ति गोपियां दे सकती, लेकिन गोपियां देमीगार देवता नहीं, देवी है ऑफ कोर्स, बट शंकर, ये रसनो स्वाद शंकर। वैष्णवा नाम यथा शंभु, देवी देवताओं में शंकर श्रेष्ठ हैं, और वैष्णवों में भी शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं, और शंकर भगवान हमें भक्ति दे सकते हैं। बारह महाजन हमें भक्ति दे सकते हैं। बारह महाजन हैं स्वयंभू, नारद, शंभु, शंकर, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर, वैयासकी, वयम, यमराज, ये बारह महाजन हमें भक्ति दे सकते हैं। उसमें ब्रह्मा, शंकर, स्वयंभू, नारद, नारद मुनि दे सकते हैं, देमीगण नारद मुनि, नारद, शंभु, कुमार, कपिल मुनि, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव, ये हमें भक्ति दे सकते हैं। देमीगण तुलसी महारानी, यस तुलसी महारानी इज टॉप मोस्ट भक्ति। त्वदीया भक्ति, त्वदीया, चार त्वदीया है कृष्ण के प्रिय, और ये चारों की सेवा कृष्ण के साथ होनी चाहिए। आराधनाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधनाम पराम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समाचार। आराधना में विष्णु की आराधना टॉप मोस्ट है, और विष्णु की आराधना से भी ऊपर श्रेष्ठ आराधना किसकी है? उनके त्वदीया की। उनके त्वदीया है चार, तुलसी देवी, भागवत ग्रंथ, भागवत वैष्णव भक्त, और जमुना गंगा, और पांचवा है वृंदावन धाम। ये कृष्ण के त्वदीया है, कृष्ण के प्रिय है। इन पांचों की सेवा श्री कृष्ण की सेवा से श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा मत है कृष्ण की सेवा इन सबों के साथ करनी चाहिए, साथ, इन सब की सेवा कृष्ण के साथ करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा इन चारों के, पांचों के साथ करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। गुरु महाराज का मूड कैसे अपनाए? भागवत में उदाहरण दिया गया है, ये सवाल है, गुरु महाराज का मूड कैसे अपनाए? तो भागवत में 11वें स्कंद में कहा गया है कि भमरी, भमरी मतलब भवरा, जंगली भवरा, भमरी ईयर, ईयर मतलब एक कीड़ा, भवरी कीड़े को पकड़ के लाती है, और भवरी अपने घर में उनको बंदी बना देती है, थोड़ा सा दिखाई दे लेकिन वो कीड़ा बाहर नहीं आ सकता, वो उनके घर में वो बंदी बना देती है। तो भंवरी हर बार आती है तो वो कीड़े को क्या करती है? डंसती है। क्या करती है? डंसना, काटती है। तो काटती है तो उनको बहुत बड़ा, कीड़े को क्या होता है? बहुत बड़ा दुख होता है। तो हर बार भंवरी आती है, अभी आएगी, और आएगी तो आने की आने का डर, और जाएगी तो फिर से आएगी उसका डर। तो हमेशा भौरी का वो ध्यान करती रहती है, डर के मारे ध्यान करती रहती, ध्यान करती रहती है। तो वो क्या बन जाती है? भौरी बन जाती है। क्या बन जाती है? वो कीड़ा था, लेकिन कीड़ा भौरी का ध्यान करते 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 क्या हो जाता है? भौरी हो जाता है। उसी तरह गुरु महाराज का मूड अगर आपको इम्बाइब करना है तो क्या करना चाहिए? ध्यायाम स्तु वंस्तस्य यस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदन। इसलिए मैं गुरुदेव का तीन संध्या ध्यान करता हूँ। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो,
यस्य प्रसादात् नागति भूतोऽपि, ध्यायस्तु वंस्तस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदन।
तो ये करने से गुरुदेव का भाव हमें आपो आप आ सकता है, हमारे चेतना में, कॉन्शियसनेस, हृदय। तो ये है गुरु महाराज का मूड कैसे हम इम्बाइब करें, एडप्ट करें, चरण में ध्यान कैसे करें। भगवान कृष्ण के चरणों में सवय मना कृष्ण पदारविंदयो, ध्यान कैसे करें। तो चरणों में ध्यान करना है तो उसका मतलब कि आपको मन वहाँ लगाए रखना होगा। तो मन केंद्रित करने के लिए आपको वैराग्य चाहिए, सबसे मन हटा के भगवान में लगेगा। लेकिन बिजनेस में घाटा, स्टॉक एक्सचेंज में घाटा, और कोई मर गया, कोई गाड़ी करोड़ों की एक्सीडेंट हो गया, और कई प्रकार की विटमनाएं, आसक्तियाँ, आसक्ति आसक्ति आसक्ति, तो मन वहाँ 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 मन कहाँ आएगा? और कृष्ण के चरणों में आप लगाओगे विरक्ति मान शून्य। तो भगवान कहते हैं अभ्यास में तो कमती है, वैराग्य में थोड़ा वैराग्य, आधा घंटा सब कुछ छोड़ दो और आधा घंटा विरक्ति, आधा घंटा मेरा कोई फैक्ट्री नहीं, मेरा कोई संबंधी नहीं, मेरा कोई गाड़ी नहीं जो एक्सीडेंट हो गया, मेरा कुछ नहीं, मेरा एक कृष्ण और कृष्ण मैं। आधा घंटा प्रैक्टिस, आधा घंटा नहीं 10 मिनट प्रैक्टिस करो, मेरा कुछ नहीं है, बस मेरा एक कृष्ण, प्रैक्टिस करो। अभ्यास अभ्यास न तो कमते या वैराग्य न च उच्यते। किसी को यह श्लोक पता है भागवत गीता का? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथिनो बलवत् दृढ़म वायु रेव दुष्करम। तो मैं क्या करूँ, वायु से भी ये दुष्कर है। तो कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये मन का वेग बहुत दुष्कर है, तो आप ऐसा करो, थोड़ा अभ्यास करो और वैराग्य रखो, विरक्ति और अभ्यास, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। तो ये करना पड़ेगा चरणों में ध्यान, कृष्ण के चरणों में ध्यान करने के लिए हमें प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट, तो ये हो सकता है। जैसे अमरीश महाराज ने सारा राज्य भगवान के चरणों में, अपना मन भगवान के चरणों में, सब कुछ भगवान के चरणों में, सब कुछ भगवान के लिए। जनक महाराज ने सब कुछ भगवान के चरणों में, उपनिषदों में कहानी है, जनक महाराज की पूरी जलने लगी और जनक महाराज के साथ कई साधु लोग स्नान कर रहे थे, तो सिपाही आके जनक महाराज जनक आपकी सारी जनकपुरी आग आग। तो वो साधु लोग थे, विरक्ति नहीं थी उनको, उनकी लंगोटी में उनको आसक्ति थी, तो वो लंगोटी बचाने के लिए भागे और जनक महाराज ने कहा मेरा कुछ नहीं जलता है, वो ध्यान मग्न रहे और भक्तिमय रहे, मेरा कुछ नहीं जलता, मेरा कुछ है ही नहीं। इसलिए जनक विदेही बोलते हैं, वैदेही, देह में भी आसक्ति नहीं। जनक महाराज को अपने देह में भी वैदेही, सीता ठाकुर रानी को वैदेही बोलते हैं, वैदेही, विदेही मतलब जनक महाराज, वैदेही मीन्स सीता माता। तो चरणों में ध्यान रखना है तो दो चीजें, लेकिन हम क्या कहते हैं, आप ये ध्यान ब्यान छोड़ो, पहले माला करो और उनको सुनो, और पहला हरे उनको ध्यान रखो कि हरे मैं बोलने जा रहा हूँ, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे, बीच में हरे जो पहला हरे है उसको बोलते हो तो हाँ मैं बोल रहा हूँ हरे इसलिए, तो ये आहिस्ते आहिस्ते सारा सब कुछ सरल हो जाएगा। तो हमें नाम करना है, सुनना है, बस सुनो और बोलो, सुनो और बोलो, और मन अगर लग गया तो लग गए, नहीं मन लगा छोड़ो। लेकिन अच्छा है अगर ध्यान आप करो, चरणों में नाम में ध्यान करो, बहुत अच्छा। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।